समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार मनोज, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टिल 8 o'clock वी विल बी विद यू एंड वील बी ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एज वेल। टुडे इज 2nd of September 2025 बीइंग ट्यूसडे, आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल हैप्पी ट्यूसडे। Maybe you can start your Tuesday with a smile and let the good vibes flow. So let's begin our program with the news headlines, shall we?
Ji.
Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2025 at Yashobhoomi in New Delhi today. The three-day conference will focus on advancing a robust, resilient and sustainable semiconductor ecosystem in the country. It will feature sessions on the progress of the Semicon India program, smart manufacturing, innovations in research and development and artificial intelligence, investment opportunities, state-level policy implementation, among others. Prime Minister will also participate in CEO's roundtable tomorrow. Over 20,000 attendees, including more than 2,500 delegates from over 48 countries, will participate in the conference. It will also include 6 countries' roundtable discussions, country pavilions, and dedicated pavilions for workforce development and startups, among others.
प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर संस्था के बैंक खाते में 1.05 अरब रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संचालित इस प्रणाली से जीविका दीदियों के बैंक खातों में अधिक पारदर्शी तरीके से धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। इसे सुगम बनाने के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं।
Prime Minister of Singapore, Lawrence Wong, will arrive on a three-day visit to India this evening. Mr. Wong will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi and hold an interaction with Indian industry and business. A number of agreements are set to be inked during Mr. Wong's visit, including in the areas of skill development, finance and digital, civil aviation, space collaboration and also shipping. The visiting dignitary will also call on President Draupadi Murmu. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान विल ऑल्सो मीट मिस्टर वोंग।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की सराहना करते हुए इसे विश्व पटल पर भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। श्री सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की सफल चीन यात्रा उनके कूटनीतिक कौशल और भू राजनीतिक परिस्थितियों को नया रूप देने और पुनर्संतुलित करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा ने शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा विश्व में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सफल चीन यात्रा के लिए बधाई दी।
German Foreign Minister Johann David Waderfall arrived in Bengaluru this morning on a two-day official visit to India. He will be visiting the Indian Space Research Organization, ISRO, before leaving for Delhi later today. Mr. Waderfall will meet Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and also External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar in New Delhi tomorrow.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की और पंजाब में बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीन से दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने श्री मान से बातचीत की और राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
Minister of Communications Jyotiraditya Scindia has said that India is a global model of regulatory transformation anchored in vision, trust and inclusive innovation. Mr. Scindia made this remark while virtually addressing a four-day global symposium for regulators being organized by International Telecommunication Union in Saudi Arabia. The minister outlined three key dimensions at the event that defines a regulator's new role as a digital ecosystem builder.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और जल जीवन मिशन से देश में स्थायी स्वच्छता और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में श्री पाटिल ने सामूहिक उपलब्धियों की सराहना की और नवाचार, अपशिष्ट से ऊर्जा और जलवायु अनुकूल स्वच्छता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल मिल रहा है। श्री पाटिल ने कहा कि खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सम्मान को दर्शाता है।
New Delhi will host the Badminton World Championships in August next year. The announcement was made by the Badminton World Federation during the closing ceremony of 2025 Championships in Paris yesterday. The competition will return to India after 17 years and to Asia after 4 years. In 2009, the World Championships were held in Hyderabad. The last time an Asian city hosted the championships was in 2018 when it was held in China's Nanjing.
हॉकी एशिया कप में अपने अंतिम पूल मैच में भारत ने कजाखस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। बिहार के राजगीर में खेले गए इस मुकाबले में अभिषेक ने 4, सुखजीत सिंह और जुगराज सिंह ने 3-3 गोल किया। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह, राजिंदर सिंह, अमित रोहिदास और संजय ने 1-1 गोल किया। भारत पूल ए में अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर है। भारतीय टीम पहले ही सुपर फोर में पहुंच चुका है। अन्य मुकाबलों में कल मलेशिया चीनी ताइपे पर 15-0 से जीत दर्ज कर सुपर फोर में पहुंच गई। वहीं चीन और जापान के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। पूल बी में कोरिया ने बांग्लादेश को 5-1 से मात दी। और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का।
Let's begin with Chennai. Greater Chennai Corporation said it has reclaimed nearly 97 acres of land by clearing 43.33 lakh tons of legacy waste from Perungudi and Kodungir dump yards through biomining. The total waste was estimated at 27.5 lakh tons. At the Kodungir dump yard, spread over 342.91 acres, biomining work began last year with a project cost of 641 crore rupees. The Commissioner J. Kumara Gurubaran said that the reclaimed marshland in Perungudi will be left alone to allow natural plant growth. The goal is to clear all legacy waste and shut down the dump yard within 5 years. And we have some more news from Chennai. Senior Indian Engineering Services Officer Ajay Kumar Jain has assumed charge as Additional Director General Projects in MES in Chennai. An officer of the 1987 batch of the IAS, he has served in various capacities in the MES. During his tenure as Chief Engineer in New Delhi, he had been responsible for the construction of strategic defense infrastructure. And moving towards Bangalore, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has informed that senior officers with extensive administrative experience will be appointed as the commissioners for the 5 corporations formed under the Greater Bangalore Authority. Speaking to media persons in Bangalore yesterday, he said that those currently working locally will be appointed to these corporations. The Bangalore Water Supply and Sewerage Board will launch the Annapurna scheme for its sanitation workers. The scheme, to be launched by Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, will distribute smart cards that will ensure a dignified standard of living for the workers. The Water Board Chairman Dr. Ram Prasad Manohar has said that the scheme combines technology with compassion to provide direct financial assistance for daily breakfast to the sanitation workers. And moving towards Hyderabad, the Telangana state government has announced plans to celebrate Badkhamma on the lines of Brazil's Rio Carnival, aiming to draw international tourists and showcase Telangana's cultural heritage on a global platform. Badkhamma is a festival of flowers celebrated before the Dashera festival in Telangana, in which women worship goddess Gauri by placing her on the floral arrangement. The state will also attempt a Guinness World Record for the largest gathering of women. The 9-day festivities will begin on 21st of this month at the Thousand Pillar Temple in Warangal. A Badkhamma Carnival will be held at Tank Bund in Hyderabad, followed by a Guinness World Record attempt on 28th of this month at LB Stadium, where more than 10,000 women are expected to gather with Badkhammas. So these were the updates from Chennai, Bangalore and Hyderabad. Now, Manoj, over to you regarding Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji, Tanvi. दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कल सचिवालय में दिल्ली परिवहन निगम DTC बस डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान श्री सिंह ने प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अधिकतम व्यस्तता के समय से पूरे दिन भर यात्रियों के लिए बसों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए रूट व्यवस्थीकरण की प्रक्रिया पर भी तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी रूट की सुव्यवस्था में कोई कमी मिल रही है, उसे दूर किया जा रहा है। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कल नई दिल्ली में लोक निर्माण विभाग की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि निर्माण में समय सीमा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग की टीम दिल्ली वासियों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने नागरिकों से इस ऐतिहासिक अवसर के लिए आधिकारिक लोगो बनाने में भाग लेने और सहयोग करने की अपील की है। लोगो प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां निर्दिष्ट QR कोड स्कैन करके या surl.lu/nmqcfs लिंक के माध्यम से जमा की जा सकती हैं। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। 150वें वर्ष के समारोह के तहत महाराष्ट्र कौशल विश्वविद्यालय, आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र, सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य के सभी तालुकों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह का समापन 7 नवंबर को होगा, जिस दिन 1875 में रचित राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और अब एक और खबर मुंबई की। मुंबई में मराठा आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को बृहन मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी से आजाद मैदान में प्रदर्शनकारियों के लिए नागरिक सेवाओं के मुद्दे पर मुलाकात की। आजाद मैदान में 29 अगस्त से आंदोलन जारी है। बृहन मुंबई नगर निगम ने आश्वासन दिया कि पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल के सुझावों पर उचित विचार किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग और उससे सटे म्यांमार तट पर चक्रवाती परिसंचरण के कारण 24 घंटों में निम्न दबाव में बदल सकता है। इसी समय पश्चिम बंगाल के दीघा पर मानसून की अक्षीय रेखा मजबूत है। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में आने वाले 2 दिनों में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज दक्षिण 24 परगना जिले में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। समुद्र की खराब स्थिति के कारण मछुआरों को अगले 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल तट के पास समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज सामान्य रूप से बादल छाए रहने तथा मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आज सामान्य रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं तन्वी से।
जी, Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain and Bengaluru is also expected to have similar weather. The minimum temperature for Chennai was 26 degrees and maximum will be around 35 degrees. And about Bengaluru, the minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 27 degrees. Now if we talk about Hyderabad, Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. The temperature will hover somewhere between a minimum of 21 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 2 सितंबर है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं।
In the year 1573, Akbar won the war near Ahmedabad and captured Gujarat.
1946 में आज ही के दिन जवाहरलाल नेहरू के उपसभापतित्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ।
एंड इन द ईयर 1970 पार्लियामेंट एबॉलिश्ड द प्रिविलेजेस ऑफ 279 महाराजाज इन न्यू दिल्ली।
1970 में आज ही के दिन कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ।
In 1993 वाइस एडमिरल V.S. शेखावत वॉज अपॉइंटेड द न्यू नेवल चीफ।
1998 में आज ही के दिन डरबन में 12वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा उद्घाटन किया गया।
In 1996, Grandmaster Vishwanathan Anand beat Garry Kasparov in the Rapid Chess Tournament in Geneva.
आज ही के दिन 1999 में भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी।
In 1998, Nishant, the pilotless training aircraft developed by DRDO, was successfully flown from Chandipur.
2008 में आज ही के दिन कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर B.N. अस्थाना को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई। और 2008 में आज ही के दिन भेल के बोर्ड के पदाधिकारी CP सिंह को नव सृजित संयुक्त उपक्रम NTPC BHEL पावर का प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया। और अब समय है उन महान विभूतियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जन्मदिन या जन्म दिवस है। आज पुण्यतिथि है विष्णु सखाराम खांडेकर की। उनका जन्म 19 जनवरी 1898 को सांगली, महाराष्ट्र में हुआ था। वे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। उनके ललित निबंध, उनकी भाषा शैली आदि के कारण वे बहुत पसंद किए जाते हैं। उन्होंने उपन्यासों और कहानियों के अतिरिक्त नाटक, निबंध तथा आलोचनात्मक निबंध आदि लिखे थे। विष्णु सखाराम खांडेकर के लेखों और कविताओं का प्रकाशन 1919 से शुरू हुआ। खांडेकर जी कला और जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध मानते थे। विष्णु सखाराम खांडेकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
And today is the birthday of Keanu Reeves, a Canadian actor and musician, the recipient of numerous accolades in a career on screen spanning 4 decades. He is known for his leading roles in action films and his philanthropic efforts as well. In 2020, the New York Times ranked him as the 4th greatest actor of the 21st century, and in 2022, Times Magazine named him one of the 100 most influential people in the world. I'm sure many of you have seen his movies, be it Point Break, Speed, The Devil's Advocate, and he played the role of Neo in The Matrix. The Matrix, Keanu became the highest paid actor for a single production, for passing the role in its 2003 sequels Reloaded and Revolutions as well. And I'm sure you have seen the movie Constantine, where he played the character of John Constantine, and he was also seen in the movie John Wick, which started in 2014, and till present the sequences have been seen. So we have a dialogue from one of his films, and that was a romantic movie titled Sweet November. Let's hear the dialogue.
Marry me.
What?
Will you marry me? Sarah, I stood on the street and I realized this is it. Life will never be better or sweeter than this. I'm happy. I'm in love. Marry me.
आज पुण्यतिथि है हबीब उर रहमान लुधियानवी की। उनका जन्म 3 जुलाई 1892 को लुधियाना में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1929 में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने लुधियाना के घास मंडी चौक पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग पानी के बर्तन का इस्तेमाल किया, तो हबीब उर रहमान लुधियानवी ने हिंदू मुस्लिम और सिख कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसे खत्म किया और एक पर्चा लगवाया, सबका पानी एक है, जिसके लिए उन्हें जेल भेजा गया। असेंबली बम कांड के बाद मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी ने भगत सिंह के परिवार के सदस्यों को 1 महीने तक आश्रय प्रदान किया। आज पुण्यतिथि है अमरनाथ झा की। उनका जन्म 25 फरवरी 1897 को मधुबनी जिला बिहार में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री थे। वे हिंदी के प्रबल समर्थकों में से एक थे। हिंदी को सम्माननीय स्तर तक ले जाने और उसे राजभाषा बनाने के लिए अमरनाथ झा ने बहुमूल्य योगदान दिया था। उन्हें एक कुशल वक्ता के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
And today is the birthday of Salma Hayek, a Mexican and American actress and film producer. She began her career in Mexico with starring roles in the telenovela Teresa from 1989 to 1991. And then she soon established herself in Hollywood with appearances in the films, be it Desperado, From Dusk Till Dawn, Wild Wild West, Dogma, and many more. In 2002, a very special film came, and Salma portrayed the role of painter Frida Kahlo in the biopic Frida, which she also produced, and made her the first Mexican actress to be nominated for the Academy Award for Best Actress. And she has been seen in the movies like Once Upon a Time in Mexico, After the Sunset, Bandidas and Grown Ups, Grown Ups 2, The Hitman's Bodyguard, and many, many more. The list is too long. Her directing, producing and acting work on television has earned her 4 Emmy Awards nominations. And as a public figure, she has been cited as one of Hollywood's most powerful and influential Latina actresses, as well as one of the world's most beautiful women by various media outlets. Let's enjoy a few dialogues of her from her movie where she portrayed the painter Frida Kahlo.
He's not thinking of his well-being. He's thinking of hers.
I'm talking about somebody willing to sacrifice a little of their own pleasure rather than go and hurting the woman who loves him.
He's not scared. Why should you be?
Because we wanted to.
It hurts, doesn't it?
But why?
Yes, you did, and I married you anyway, and you promised to be loyal.
Been my comrade, my fellow artist, my best friend.
But you've never been my husband.
आज जन्मदिन है अभिनेत्री साधना का। उनका जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने फिल्म अबाणा से अपना फिल्मी सफर आरंभ किया था। साधना ने हिंदी फिल्मों से जो शोहरत पाई और जो मुकाम हासिल किया वो किसी से छिपा नहीं है। साधना का पूरा नाम साधना शिव दासानी था। वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। अपने बालों की स्टाइल की वजह से भी साधना प्रसिद्ध थी। उनकी बालों की कट स्टाइल साधना कट के नाम से जानी जाती है। आपकी मुख्य फिल्में हैं लव इन शिमला, मेरे महबूब, आरजू, वक्त, मेरा साया, हम दोनों, अमानत, इश्क पर जोर नहीं, परख, प्रेम पत्र, गबन, एक फूल दो माली आदि। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत। आज जन्मदिन है पवन कल्याण का। उनका जन्म 2 सितंबर 1968 को आंध्र प्रदेश में हुआ है। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। वे कई तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म अक्कड़ा अम्माई इक्कड़ा अब्बाई से किया। इसके बाद उनकी लगातार 6 हिट फिल्में आई, जिनमें थोली प्रेमा, थुम्मडू, बद्री और कुशी लगातार ब्लॉकबस्टर रहीं। इन फिल्मों में कल्याण को एक युवा आइकन के रूप में स्थापित किया। 2001 में वे पेप्सी के पहले दक्षिण भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बने। उन्होंने लंबे अंतराल के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म जलसा से वापसी की और गब्बर सिंह, अतिरिंगतिकी दरेदी, गोपाला गोपाला, वकील साहब और भीमला नायक जैसी हिट फिल्में दी। गब्बर सिंह के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
देखो देखो गब्बर सिंह, ऑल इंडिया की हाइपर सिंह, भीड़ी पेरू इंटे कुंडाला कुंडेलो ना कुला साउंडिंग, भीड़ी बॉडी स्टील के सिंह, भीड़ी नरम नाइलॉन स्ट्रिंग, भीड़ी फेयर रेक्टर।
आज जन्मदिन है तोची रैना का। उनका जन्म 2 सितंबर 1971 को दरभंगा बिहार में हुआ है। वे एक भारतीय गायक, संगीतकार और दार्शनिक हैं, जिन्हें हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायक के रूप में जाना जाता है। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में फिल्म ये जवानी है दीवानी के लिए गाने कबीरा, वेकअप सिड से एक तारा, शोर इन द सिटी के लिए श्रेया घोषाल के साथ युगल गीत, फिल्म भिंडी बाजार के लिए मालदार की जेब, फिल्म नो वन किल्ड जेसिका के लिए आली रे गीत शामिल हैं। आज जयंती है टी के माधवन की। उनका जन्म 2 सितंबर 1885 को कार्थिकापल्ली, जिला अलपुझा, केरल में हुआ था। वे केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक और पत्रकार थे। उन्होंने बहुत सी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किए थे। और अब आज जयंती है इश्मीत सिंह सोढ़ी की। वे एक पंजाबी गायक थे जो अमूल स्टार वॉयस ऑफ इंडिया के 2007 के विजेता थे। अपनी दिलकश आवाज के कारण उन्होंने कम समय में ही लाखों दिलों में जगह बना ली थी। 2 सितंबर 1988 को लुधियाना में जन्मे इश्मीत का निधन 19 साल की उम्र में 29 जुलाई 2008 को मालदीव में एक स्विमिंग पूल में डूबने से हुआ था।
मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रतिपालन लागा करी तेरा कराया
और अब आप समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Namaskar. Namaskar.